श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 21 श्लोक संख्या 2 दिनांक 11 अप्रैल 2015 स्पीकर माधवानंद प्रभु।
तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे।
वृंदावन के सरोवर नदियां तथा पर्वत पुष्पित वृक्षों पर मंडराते उन्मत्त भौरों तथा पक्षियों के समूह से गुंजारित हो रहे थे। मधुपति श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों तथा बलराम के संग उस जंगल में प्रवेश किया और गौरे चलाते हुए वे अपनी बंशी बजाने लगे। आज हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 21वें अध्याय का ये दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है गोपियों द्वारा कृष्ण के वेणु गीत की सराहना। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सुबह के इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। पिछली बार हमने देखा कि कैसे प्रकृति जो हमारी माँ है हमें अलग अलग शिक्षाएं देती है, उनके अलग अलग आविष्कारों से हमें शिक्षाएं मिलती है, अपने जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए और किस प्रकार से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए हम प्रकृति से सीखते हैं। और हमारे पिता है भगवान श्री कृष्ण, माता पिता को यह काम ही रहता है कि बालकों को कुछ ना कुछ शिक्षा देते रहे, तो जो भी कार्य करते हैं उससे हमें शिक्षा मिल जाती है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मधुपति वृंदावन के सुंदर ऐसे वन में जहाँ पर फल फूल लगे हुए हैं, घनी छाया है और छोटी सी पगडंडी से अंदर जा रहे हैं, क्या करते हुए? कुशलतापूर्वक वेणु बजाते हुए। कैसे आनंद का दृश्य है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब अनेकों प्रकार के रंग बिरंगी पक्षी, अनेकों प्रकार रंग बिरंगे फूल फल पत्ते भौरे, इनका एक अलग प्रकार का आवाज, जंगल में आप जाएंगे तो आपको अलग प्रकार की आवाज आएगी, साधारण आवाज नहीं आएगी, कार के हॉर्न की या ट्रेन की ऐसे आवाज नहीं आएगी, अलग प्रकार की आवाज आती। लेकिन इस आवाज को मधुपति भगवान श्री कृष्ण उस आवाज को और आनंदमय कर रहे हैं, कैसे? कुशलता पूर्वक अपने वेणु बजाकर। तो कृष्ण भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं इससे? भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम गुरु है, आदि गुरु है, तो कुछ ना कुछ सिखाएंगे। उसके उपरांत स्वयं वो बताते हैं कि मैं सारे संसार का पिता हूँ, पिता अमस्य जगतो धाता माता पितामह। मैं पिता, मैं माता, मैं गार्डियन धाता, मैं पितामह, ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है। परिवार में ये सब लोग का कार्य क्या होता है? वो बच्चों को कुछ ना कुछ पढ़ाते रहते हैं। तो यहां भगवान श्री कृष्ण हमें क्या सिखा रहे हैं? यहां ये सिखा रहे हैं कि हर व्यक्ति का अपना अपना एक रंग बिरंगी रंग होता है, उसका एक प्रयोजन होता है। और जब हम ऐसे स्थिति में जाते हैं तो किस प्रकार से उसी अवस्था को और अच्छे बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे भगवान श्री कृष्ण ये अत्यंत कुशल है वेणु बजाने में। जब ये वेणु बजाते हैं तो क्या क्या होता है आप समझ सकते हैं? क्या हो सकता है? ऐसे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब वेणु बजाते हैं तो सारा वृंदावन स्तब्ध हो जाता है, यहां तक कि यमुना बहना बंद हो जाती है। विचार करो आप, नदी बंद हो जाती है, जो पत्थर है वो पिघलने लगते हैं, सारे प्राणी मात्र स्तब्ध होकर केवल सुनते रहते हैं। गोपियों को पता नहीं चलता कि किस प्रकार से व्यवहार करें। गोपियां क्या करती है? कंगन लेके पैर में डालती है, जो आंख में सुरमा लगाना चाहिए वो कान में लगाती है, जो ऊपर वस्त्र पहनने चाहिए वो नीचे पहनती है। विचार करो, ऐसे अलग प्रकार के गुण इस वेणु की बजाने में है, इतनी एक्सपर्टीज है, सारा संसार स्तब्ध हो जाता है। भगवान कृष्ण जब वेणु बजाते हैं तो संसार मानो थम जाता है। मतलब कितनी एक्सपर्टीज है, कितनी कुशलता है। तो इतनी कुशलता के बाद वो तो कहीं पर भी जाएंगे तो बोले अभी आप सब लोग चुप रहो, मैं बजाऊंगा। कोई भी कुशल व्यक्ति आएगा, जैसे हमारा कीर्तन चल रहा है और कोई मृदंग बराबर से बजा नहीं रहा है या कोई बराबर गा नहीं रहा, तो कोई एक्सपर्ट सिंगर आता है तो क्या करता है? तुरंत माइक हटा लेता है और गाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है सब क्या चल रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहां बता रहे हैं कि कुशलता इसी में है कि हम जो चल रहा है भगवान के आनंद के लिए, जो चल रहा है प्रकृति के नियम के अच्छे तरह से चल रहा है, उसको बिगाड़ो मत, उसमें अपना योगदान करके। जय श्री श्री राधा कृष्ण तेरे भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। अपना योगदान करके उसे और सुंदर बनाओ, ये आज हम इससे सीख सकते हैं। प्रभुपाद ने अपने सारे शिष्यों को अंतिम दिनों में एक बात बताई। प्रभुपाद ने कहा कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो, जो कि सब लोग करते थे, सब लोग कहते प्रभुपाद वी लव यू, प्रभुपाद ने कहा अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो प्लीज कोऑपरेट। क्या कहा? एक दूसरे से कैसे, क्या बोलेंगे उसको? सहयोग से रहिए, हाँ, एक दूसरे के साथ सहयोग रखो, प्लीज कोऑपरेट। तो ऐसे लगता है कि कितना बड़ा चैलेंज है ये, हाँ। प्रभुपाद जाते जाते एक भयंकर जैसे चैलेंज देखे गए कि कोऑपरेट, जबकि संसार हमें बताता है यू आर एन इंडिविजुअल, यू आर द बेस्ट, आपको सर्वोत्तम बनना है, यही शिक्षाएं दी जाती। लेकिन प्रभुपाद क्या कहेंगे? कोऑपरेट। तो भक्त लोग प्रयास करते बेचारे, हाँ, दिन रात प्रयास करते कोऑपरेट सहयोग का, लेकिन फिर भी सहयोग इतना आसान नहीं है। तो सहयोग कैसे करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण से ही सीखना है, वही हमें बुद्धि देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम, सहयोग करना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये निगेटिव साइड होगी सहयोग की, प्रभुपाद ने कहा प्लीज कोऑपरेट, मतलब बहुत कठिन है लेकिन हम कैसे भी करके उसको मना लेंगे, कर लेंगे, प्रयास करेंगे। ऐसे एक भक्त के हृदय में आते कैसे भी मेरा कार्य क्या है, प्रभुपाद ने कहा है कोऑपरेट, आई विल कोऑपरेट, सम हाउ आई विल कोऑपरेट, बराबर। लेकिन एक दूसरी साइड है, ये इतना कठिन नहीं है, कोऑपरेशन इज अ जॉय। सहयोग करना भक्तों के साथ, प्रकृति के साथ, ये एक आनंद भरा क्षण भी हो सकता है, इसमें आनंद भी हो सकता है। ये दूसरी साइड हमें देखनी चाहिए, क्योंकि जनरली हम लोग बात करते कोऑपरेशन की तो सब लोग सोचते हैं अभी मुझे कैसे भी करके दांत चबाकर, हाँ क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, दांतों तले चने दबाकर कैसे भी करके मुझे कोऑपरेट करना है। लेकिन इतना घिनौना नहीं है ये कार्य, ये बहुत प्रसन्नता देने वाला कार्य है। केवल हमारी दृष्टि बदलनी चाहिए, कौन सी दृष्टि होनी चाहिए, जो कृष्ण की दृष्टि है। जब हम कृष्ण की दृष्टिकोण से देखेंगे तो एकाएक पता चलेगा सबके साथ कोऑपरेट करना कितना आसान है, कितना आनंद भरा है। तो ये हमारा स्थायी भाव है सबके साथ सहयोग करके, क्योंकि बिना इस सहयोग के हम लोग हर दिन प्रतिदिन गाते हैं मुझे बैक टू गॉडहेड जाना है, बोलते ना सब लोग, हमारा मैगजीन है बैक टू गॉडहेड। लेकिन बैक टू गॉडहेड जाके करोगे क्या, अगर सहयोग नहीं कर पा सकते तो यहां नहीं कर पाओगे तो वहां कैसे करोगे। एक बहुत सुंदर भक्त है जिनका नाम है, बुद्धिमान भक्त है, धर्मात्मा प्रभु, इन्होंने कविता लिखी है, बहुत सुंदर कविता, आपको पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी में है, आप लोगों ने शायद पढ़ी भी होगी लेकिन मैं दोहराता हूं। उन्होंने वर्णन किया है कि एक भक्त जो कि इस संसार में बहुत सारे मैनेजरियल पोस्ट करता था, वो भक्त एक दिन समय के अनुसार भगवान के धाम पहुंच जाता है, तो दूर से ही देखता है दरवाजा खुल जाता है और दूर से देखने लगता है, तो देखता है कि अरे मेरा टेंपल प्रेसिडेंट पहले से ही उधर है। तो उसे तो इतना भयानक व्यक्ति भगवान के धाम में कैसे पहुंच गया। फिर वो देखता है कि अरे वो दूसरा जो टेंपल कमांडर था वो भी है, वो तो भाई इसके तो इतने तकलीफें थी, तो सबको तकलीफ देता था और कैसे भयानक कार्य करता था, मैं सबको कंप्लेन करता था इसकी, और ये मेरे से पहले। ऐसे बहुत सारे भक्त उसने देखे तो विचार में पड़ गया कि मैं गोलोक में आया कि कहां पर आ गया। वो सोच रहा है, और जैसे ही वो गेट पर पहुंच गया, भगवान तो वहां खड़े थे उनको बुलाने के लिए, आ जाओ भाई आ जाओ, तो कृष्ण ने उनको बहुत प्रेम से अंदर बुलाया। लेकिन अंदर सब स्तब्धता हो गई, जब पहले खेल रहे थे, कूद रहे थे, मस्ती कर रहे थे, आनंद में थे, तो अचानक स्तब्धता आ गई। तो कृष्ण को पूछते कि क्या मैं सही जगह पे आ गया हूं, बोला यस यस, ये गोलोक वृंदावन है, आपका घर है, आप आ जाओ, कितने समय के बाद आप आए। तो ये सन्नाटा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि वो सब लोग दे आर शॉक टू सी यू हियर, वो सबको अचंबा हो रहा है कि आप कैसे पहुंच गए। कहने का तात्पर्य है कि हम बहुत बार दूसरों को अपनी नजर से देखकर ये समझ गए कभी नहीं जाएगा, इसका कोई चांस नहीं है भगवत धाम जाने का, जबकि वो सारे लोग शायद आपके बारे में भी वही सोच रहे हैं। इसका कारण क्या है, इतना अगर हमारा ये स्थायी स्वभाव है कि सहयोग करना, आनंद में रहना, जैसे गोलोक वृंदावन में अगर आप समझो बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हो आप, हाँ बहुत सुंदर गाते हो, सब लोग स्तब्ध हो जाते आपके गाने से, और वहाँ पर आप जाओगे इस ईर्ष्या को या असूया को निकाले बिना पहुँच जाओगे और आप गाना शुरू कर दोगे तो अचानक कोई आके बोलेगा आपको, अरे चुप हो जा यार, वो भौंरा गा रहा है। हाँ, भौंरा को गाना चाहता है, आप चुप हो जाओ, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ऐसी स्थिति जिसमें हम सबके गुणों को पहचानते हैं, सबके गुण जो कृष्ण को पसंद है उसी में हमको भी पसंदी है, ऐसा जो साई भाव हमारा है वहाँ तक हमें पहुँचना है। और उसके लिए सबसे बड़ी हमारी बाधा क्या है, यह असूया, भगवान के प्रति जो असूया, यह हमारा ओरिजिनल सिन। देखो ये शुरुआत को हमने जो यहाँ पर पतित होने का कारण ये था कि भगवान के प्रति असूया थी। तो पूरा ये भक्ति का मार्ग है, हमारा जो साधना भक्ति है वो किस लिए है, इसी असूया को नष्ट करने के लिए। कैसे हम इस असूया से बाहर आ सकते हैं और अपने जीवन को भगवान के इच्छा से सम्मिलित कर सकते हैं, यही साधना भक्ति है। साधना भक्ति में पहला क्या बताया था, पहले गुरु को स्वीकार करो। क्या कहते हैं, एक भक्त को अगर साधना भक्ति करनी है तो उसको पहले भक्त को, गुरु को स्वीकार करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताते हैं, उद्धव तो भगवान का पार्षद है, उनका भाई है, मंत्री है, सबसे निकट का भक्त है, उसको भी भगवान बताते हैं कि उद्धव जो भक्त, जो व्यक्ति मेरे पास आना चाहता है उसको पहले गुरु के पास जाना चाहिए। और ये गुरु जो है उसको उसे मेरे जैसा ही मानना चाहिए, यहां तक कि वो मैं ही हूं। गुरु कौन है, मेरे जैसा ही वो मैं ही हूं, और कभी भी उसके प्रति असूया नहीं होनी चाहिए। ये समझ करके वो कोई साधारण व्यक्ति है। यही हम लोग प्रतिदिन गाते हैं, बोलते हैं कि गुरु को साधारण व्यक्ति नहीं समझना और उनकी अवज्ञा नहीं करना। क्यों, क्योंकि हम साधारण व्यक्ति समझेंगे हमारी बद्ध अवस्था के कारण। आत्मवत मन्यते जगत, जो हमारे हृदय में चल रहा है वैसे हम लोग सोचते गुरु भी ऐसे ही होंगे, लेकिन कृष्ण भगवान साफ साफ बता रहे ऐसे नहीं करना चाहिए। तो पहले बताते हैं कि क्या करना चाहिए, गुरु से असूया नहीं करनी चाहिए। फिर बताते हैं वैष्णवों की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों, वही कारण है कि हम निंदा क्यों करते हैं। वैष्णवों की निंदा कब करते हैं हम लोग, जब हम समझते हैं कि मैं उससे अच्छा हूं, उस व्यक्ति से मैं अच्छा हूं और मैं उसको ठीक कर सकता हूं, ये हमारे हृदय में बहुत विश्वास होता है और उसके कारण हम लोग वैष्णवों की निंदा करना शुरू कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस फैक्टर को कहां लेके थे, नंबर वन। हाँ, अगर आप नाम ले रहे हो भगवान का तो सबसे पहला अपराध बताते कि वैष्णवों की निंदा करना। क्यों, असूया जानी चाहिए। फिर भगवान बताते आप संकीर्तन करो। संकीर्तन का मतलब क्या है, साथ में आकर कोई भी भक्ति का कार्यक्रम जो है, श्रवण हो, कीर्तन हो, कोई पुस्तक वितरण हो, कोई भी कार्य साथ में आकर प्रेम से करेंगे तो इसमें क्या होता है, फिर हम एक दूसरे को इसी प्रकार से जानते हैं कि मैं इससे श्रेष्ठ हूं। इसीलिए ये सारा जो साधना का मार्ग दिया है ये इसी के कारण दिया है ताकि क्रमशः हमारे अंदर जो असूया बैठी हुई है वो नष्ट हो जाए। ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, हमें जानना चाहिए। ये हमारा भगवान के प्रति जो आकर्षण है, भगवान के प्रति हमारा जो हमारी इच्छा है वहां तक पहुंचने की, इसको नष्ट कर देता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि असल में अगर कोई व्यक्ति मेरे से असूया रखता है, मेरे भक्तों से असूया रखता है, तो भगवान उसको नकार देते हैं। क्या कहते हैं गीता में, भगवान सब सारे मार्ग बताने के बाद बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम भज। मेरे पास आने के लिए आपको ये सारे जो तथाकथित धर्म के संकल्पना है उनको त्याग कर केवल मेरे शरण में आने का एक ही धर्म का पालन करो। और उसी के अगले श्लोक में फिर बताते हैं, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चाशु शुशवे वाक्यम न च माम योग्य सुयते। जो अभक्त है, जिसने कोई तपश्चर्या नहीं की है और जो मुझसे असूया रखता है, ऐसे व्यक्ति को यह ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। इसका मतलब भगवान क्या कर रहे हैं, असूया वाले व्यक्तियों को बता रहे हैं आपको मेरे पास जगह स्थान नहीं है। क्योंकि असूया से हमारी पूरी दृष्टि बदल जाती है। श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी बताते हैं महाराज परीक्षित को कि एक दिन सारे बालक और सारी गायें चरते चरते इसी प्रकार के गर्मी के मौसम में यमुना के तट पर पहुंच गए और उन्होंने पानी पी लिया। और पानी पीने से क्या हो गया, सारे गायें और सारे जो बछड़े थे, बच्चे थे, वो सारे गतप्राण हो गए, वहीं पर ढेर हो गए। इसका कारण ये था कि वहाँ पर एक कालिया नाम का भयानक विषारी ऐसा विषैला सर्प रहता था, जिसके अनेकों फन थे, सैकड़ों फन थे, और सारे फनों में भयानक इस प्रकार का विष भरा हुआ था। इतना विष था कि उस यमुना के जल में, उस सरोवर में, यमुना के जल से एक सरोवर बना था बाजू में ही, वहाँ पर उससे जो विषैली वाफ निकलती थी, अगर कोई पंछी भी ऊपर से जाता है तो उस वाप के संपर्क में आकर नीचे गिर जाता, मर जाता था। कितना विष। भगवान कृष्ण जब जान गए तो उन्होंने उसको दंडित करना तय कर लिया और एक विशाल हाथी की तरह उन्होंने कूद कर पानी को यहाँ वहाँ हटाया। तो कालिया जैसे ही ऊपर आया देखने के लिए किसने आक्रमण किया है, तो कालिया क्या देखता है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कालिया भी समझ गया कि इससे सुंदर व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। जब उन्होंने उनका मुख देखा, उनकी आंखें देखी, उनका सुंदर श्यामल वर्ण देखा, उनका हर जो अवयव था इतना सुंदर, और जिस प्रकार से वो तैर रहे थे सुंदरता से, कालिया तुरंत समझ गया कि ऐसा सुंदर व्यक्ति और कोई हो नहीं सकता। लेकिन दूसरे ही क्षण असूया के कारण कौन सा विचार आया उनके मन के, अब मैं इसको खत्म कर दूं। तो कितने भी सुंदर भगवान रहेंगे और हमारे हृदय में असूया है, हमारे सामने भी खड़े हैं, तो हम उनको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि असूया से विषैली बन चुकी है। उसी प्रकार से दुर्योधन के दरबार में, धृतराष्ट्र के दरबार में भगवान जब शांति दूत बनकर आते हैं और दुर्योधन सोच रहे थे कोई मैजिशियन है, इसको थोड़ा सा योग सिद्धि प्राप्त है, मुझे भी योग सिद्धि प्राप्त है, मैं भी बड़ा हूं, मैं तो राजा हूं। तो दुर्योधन ने अपने सेवकों को, सैनिकों को आज्ञा दी कि पकड़ो इसको। और भगवान ने तभी एक छोटा विराट स्वरूप दिखाया, जो गीता में था वो महाभयानक था, लेकिन छोटा पैलेस के अंदर फिर भी वो भी भयंकर था। ये देखने के बाद भी दुर्योधन ने ये नहीं जाना, ये तो भगवान है, वो क्या सोच रहा है असूया के कारण, ये मेरे जैसा ही, खाली उसको थोड़ा मेरे से ज्यादा जादू आता है बस। तो ये असूया है। असूया से हम लोग किसी को बड़ा समझ नहीं पाते हैं। प्रभुपाद और भक्तिसिद्धांत सरस्वती हमेशा कुछ ना कुछ छोटे छोटे उपाख्यान बताते थे जिसमें से हम कुछ सीख ले सकते हैं। तो प्रभुपाद बताते थे कि किस प्रकार से असूया किस प्रकार से हमें दबा के रखती है। तो गांव में लोगों ने देखा है कि एक लड़का है जो नंगा घूमता है यहाँ पर, उसका नाम पेंचो है। क्या नाम है? बंगाली में पेंचो। तो उसको सब लोग कहते नंगा पेंचो, क्योंकि वो नंगा घूमता था बालक की अवस्था में। फिर वो बड़ा हो गया, बड़ा बैरिस्टर बन गया, लंदन जाके आया और अंग्रेजों की सरकार थी, उन्होंने उनको जज बना दिया बैरिस्टर बनने के बाद। तो गांव में बाहर से एक व्यक्ति आया, उसने बोला अरे वो पेंचो जो था, नेकेड पेंचो, नंगा पेंचो, वो जज बन गया है। तो असूया ऐसे, क्योंकि बाजू का रहने वाला था, तो आज मैं तो वहीं के वहीं झोपड़ी में रहता हूं और ये पेंचो जज बन गया। तो तुरंत लोग कहने लगे नहीं नहीं ये ऐसे हो ही नहीं सकता है, नंगा पेंचो के इधर इतना ही बड़ा जज कैसे बन सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मैंने स्वयं की आंखों से देखा, मैंने कही सुनी बात नहीं कह रहा हूं, मैंने देखा है कि वो जज के सीट पर बैठा हुआ है, वो घंटी बजाता है, जजमेंट देता है, गाड़ी आती है उसको लेकर जाने के लिए, फिर भी असूया इतनी कठिन है, वो क्या बोलते हैं ठीक है फिर उसको पगार नहीं मिलती होगी उसको तनख्वाह नहीं मिलती होगी, ऐसे ही करता होगा फ्री में। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये असूया का स्वभाव है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में घूम रहे थे, सारा जो वाराणसी में ऐसे लग रहा था कि मानो गंगा कभी कभी वाराणसी में पानी लेके आती है, कभी फ्लड हो जाता है तो पानी वाराणसी में आ जाता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उनके कारण, उनके भक्ति के कारण एक अलग प्रकार की बाढ़ हरिनाम संकीर्तन की, जहाँ देखो वहाँ भगवान का नाम चल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, अश्रु डाल रहे हैं और लोग देखने को आ रहे हैं कौन व्यक्ति है, ये सन्यासी कहाँ से आए हैं, इतने सुंदर, उनके आंखों का डेकोरेशन क्या है, आंसू, भक्ति के आंसू। और उसी में एक मराठी ब्राह्मण वहां से रहने वाला, वो देखने को आता है और जैसे ही वो देखता है आजानुलंबितम, उनके जो हाथ थे वो इस घुटने से भी नीचे जा रहे थे, उनके सुंदर आंख, उनका गौर वर्ण, उनका बहुत ही मधुर लेकिन डीप वॉइस, ये सब देखकर मराठी ब्राह्मण उत्तम समझ गया तुरंत कि नहीं ये तो भगवान है। फिर उसने जाकर अपने जो और आचार्य थे काशी में वाराणसी में, खास करके प्रकाश आनंद सरस्वती, उनको बताया कि श्री कृष्ण चैतन्य ये साक्षात भगवान है, उन्होंने सारे वाराणसी को भक्तिमय बना दिया है, क्यों ना आप सब लोग उनके एक बार दर्शन करें। तो वे उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि देखो तुम जरा वेदांत का अध्ययन अच्छी तरह से करो, ये चैतन्य जो आया है, श्री कृष्ण चैतन्य ने, ये चैतन्य जो आया है वो एक थोड़ा सा जादूगर है, मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को फंसाता है, लेकिन उसकी जादू यहां पर वाराणसी में नहीं चलेगी, यहां पर केवल वेदांत होता है, और आप भी अभी वेदांत का अध्ययन करो, उसके पास मत जाओ। तो इस महाराष्ट्र ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ, वो जाकर फिर से महाप्रभु कहता है कि ऐसे क्यों कहते हैं लोग, और मैं कितनी बार श्री कृष्ण चैतन्य बोल रहा हूं लेकिन वो श्री कृष्ण चैतन्य नहीं बोल रहे हैं, वो केवल आपको चैतन्य चैतन्य कर तिरस्कार के भावना से बोलते हैं। तभी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी अपराधी, इनका अपराध क्या है, क्योंकि वो स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, भगवान अपने जैसा ही ऐसे समझते हैं, इसलिए अपराधी व्यक्ति के मुख से भगवान का नाम नहीं निकलेगा, आप चिंता मत करो, उनको छोड़ दीजिए, आप भगवान का नाम लीजिए। किसके कारण? असूया के कारण। तो इस प्रकार से भगवान सामने होते हुए भी हम असूया के कारण उनको नहीं पहचान पाएंगे, उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक भक्त का पूरे जीवन का उद्देश्य क्या होता है, किसी प्रकार से इस असूया को त्याग दे, यही भक्ति का मार्ग है। इसी प्रकार से हम आगे आगे जा सकते हैं। तो इसका उपाय क्या है, अगर इतना भयानक शत्रु हमारे साथ बैठा हुआ है तो इसका उपाय क्या है? हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमारे साथ भक्ति है। स्वयं श्री चैतन्य महा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण दिखाने को आते हैं किस प्रकार के भक्ति के मार्ग से हम इस भयानक असूया रूपी राक्षस को खत्म कर सकते हैं। और महाप्रभु के रूप में आकर वो दिखाते हैं कि भक्तों के साथ कैसा रहना चाहिए, गुरु के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए। हमें गुरु के सामने इतनी कठिनाई नहीं आती क्योंकि हम एक्सेप्ट करते हैं इज अ सुपीरियर पर्सन। शुरू शुरू में उसके प्रति भी तकलीफ होती है, लेकिन आस्ते 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 क्रमशः ऐसे लगता कि नहीं ठीक है, गुरु गुरु है। इसलिए गुरु के बहुत निकट संपर्क में भी नहीं आना चाहिए, ऐसे कहा जाता है शास्त्रों से। बहुत निकट निकट में आओगे तो आप देखेंगे कि अरे वो भी हमारे जैसे खाते पीते सोते हैं, तो हम उनको साधारण समझने लगेंगे और फिर हमें असूया बढ़ेगी, क्योंकि असूया मतलब दूसरों को साधारण समझना। इसलिए थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस रखना चाहिए। लेकिन भक्तों का क्या करें, भक्त तो हमारे इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करें? इसलिए महाप्रभु हमें एक बहुत ही सुंदर उपाय देते हैं। कौन सा उपाय? ऑलवेज एप्रिशिएट द डिवोटीज। हमेशा भक्तों के गुणों को ढूंढो और उस गुण का वर्णन करो। स्वयं के उदाहरण से दिखा रहा, सारे भक्त जब नादिया वगैरह आदि ग्रामों से बंगाल से हर साल जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के लिए आते थे, एक साथ 200 300 400 500 भक्त आते थे और सब महान भक्त थे। रथ यात्रा होती थी, फिर कुछ समय रहते थे, फिर जाते थे। तो एक साल अभी जाने का समय आ गया, सब लोग बहुत दुखी थे कि अभी जाना पड़ेगा, अभी हम श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं देख पाएंगे, उनके साथ कीर्तन नहीं कर पाएंगे। फिर भी दुख के साथ वो जा रहे थे। तो जाते समय महाप्रभु के सामने सारे लोग आ गए इस प्रकार से, और महाप्रभु सबको देखकर बहुत प्रसन्न है, हंस रहे हैं। तो उनमें से कुछ भक्त थे, सत्यराज खान और वासुदेव, वो जाकर पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम लोग गृहस्थ हैं, बहुत गृहस्थी में फंसे हुए हैं, हमारा संबंध रुपया पैसा इसी से आता है, हम कभी भी डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं जैसे साधु लोग करते हैं, सन्यासी लोग करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? महाप्रभु तुरंत बताते, वैष्णवों की सेवा करो और हरि का नाम लो, यही हमारा युग धर्म है, वैष्णव सेवा और हरि नाम। वैष्णव को कैसे समझाया जाए? जो भी एक बार भी हरि नाम लेता है वो वैष्णव है, भगवान ने बता दिया। कहते हैं कि आप लोग सब लोग भक्त लोग जो है, आपका गांव कुलीना गांव, एक कुलीना ग्राम जो है इतना सुंदर गांव है, देखो महाप्रभु का विचार कैसे भटक रहे हैं, इतने सुंदर गांव है, आपके गांव में एक महान संत हो गए गुणराज खान, उन्होंने ग्रंथ लिखा कृष्ण चरित, और उसमें एक वाक्य लिखा है उन्होंने कि कृष्ण ही मेरे प्राणेश्वर है, और इस एक वाक्य कारण मैं उनसे इतना प्रेम करता हूँ कि उनके गांव में से आए हुए आप सबसे मेरा अति प्रेम है, यहाँ तक कि आपके गांव का कुत्ता भी मुझे प्रिय है। देखो भगवान के देखने का दृष्टिकोण कि भक्त है उसके साथ जो जो जुड़ा हुआ है वो सब मुझे प्रिय है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ऐसे, ये भक्त बहुत अच्छा प्रवचन देता है, ये अच्छा चैंटिंग करता है, बट दिस प्रॉब्लम इन यू आई कांट टॉलरेट इट, है कि नहीं? कोई तो एक दुर्गुण हम लोग देख लेंगे और सारे गुणों के ऊपर हम लोग पानी फेर लेंगे। जब भी भक्त कैसा होता है, सारे दुर्गुणों में एक गुण भी होगा तो उसी को देखते रहेगा। फिर बोलते हैं शिखंड गांव के दूसरे भक्त भगवान, तो वो गांव के भक्तों को देख फिर से प्रसन्न होकर महाप्रभु बोलते हैं कि अरे नरहरि सरकार, मुकुंद सरकार, हे मुकुंद आप तो बड़े भक्त हो, रघुनंदन के पिता हो, लेकिन क्या सही है कि आप उसके पिता हो कि वो आपका पिता है? रघुनंदन आपका पिता है कि आप उसके पिता हो? तो तुरंत मुकुंद सरकार बताते नहीं नहीं भगवान, मैं भौतिक दृष्टि से उसका पिता हूं लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो मेरा पिता है। क्यों? क्योंकि उसके कारण मुझे मेरे गोपीनाथ के दर्शन हुए, उसने मुझे सिखाया भक्ति कैसे किस प्रकार से निरागस्ता से करनी चाहिए, भक्ति में कैसे विश्वास होना चाहिए। समय का मैंने तो हम लोग उसकी भी कथा बता दो। फिर बाकी दूसरे लोग भक्तों को बुलाते हैं, वासुदेव दत्त को बुलाते हैं, बोला असल में वासुदेव आपका जो भाई है मुकुंद दत्त वो मेरा मित्र है, लेकिन वो मेरा मित्र होते हुए भी आपसे मुझे अधिक प्यार है क्योंकि आप साक्षात प्रह्लाद हो, क्या चाहते हो आप? वसुदेव ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि सारे संसार में जितने भी पापी पाप करने वाले जीव है उन सब का पाप मुझे दे दो और आप सब लोग को मुक्त कर दो इस जीवन की श्रृंखला से, उनको भक्ति दे दो। तभी महाप्रभु कहते इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप इस बात को इस प्रकार से बात करोगे क्योंकि आप स्वयं प्रह्लाद हो, प्रह्लाद ने भी यही मांगा था, प्रहलाद में यही प्रार्थना की थी कि भगवान मुझे इस संसार में रहने दो, मुझे आप नरक में डालो लेकिन ये सारे लोगों को लेके जाओ, मेरे पिता को आप मुक्ति दे दो क्योंकि मैं जहाँ पर भी रहूँगा चाहे मैं स्वर्ग में रहूँ या नरक में रहूँ मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मेरा आपका नाम मेरे मुख में हमेशा रहेगा, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपनी वाणी से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से भक्तों को देखना चाहिए। सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर के साथ रहते थे, जब वे वृंदावन से पूरी आए तो रास्ते में अनेकों जगह पर खाने पीने का कोई जगह नहीं था तो गलत गलत जगह से पानी पिया, कोई कुंड से पानी लिया, कोई जंगल में नदी में से पानी पी लिया, कहीं पर खा लिया, तो उनके शरीर में बहुत भयानक ऐसे फोड़े हुए थे और फोड़ों में से पूरा जो पस खून सब रस सब बाहर आता था, गंदा विषैला, और उसके कारण उनके शरीर से दुर्गंध आती थी और दूर रहते थे। लेकिन जैसे चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि सनातन गोस्वामी आए हैं तो महाप्रभु वहाँ चले गए हरिदास ठाकुर के कुटिया में, सिद्ध बकुल आज जिसका नाम है, वहाँ पर जाकर सनातन गोस्वामी ने उनको प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, बहुत प्रेम से उनको उठाया चैतन्य महाप्रभु ने, और क्या किया, जोर से कसकर आलिंगन दिया। और महाप्रभु बहुत तगड़े थे, कसकर अगर महाप्रभु ने आलिंगन दिया तो चैतन्य महाप्रभु के शरीर पर वो सारा पस जो है वो लग गया ऐसा अलग अलग जगह में, जैसे दिवाली में हम लोग गाय के ऊपर ऐसे लाल पीले कलर के ऐसे बूंदे लगाते हैं ना गाय में, गांव में देखा होगा आपने, गाय को ऐसे ऐसे छप्पे मारते हैं, उसी प्रकार से पूरे शरीर पे छप्पे आ गए। किस प्रकार के? सुनहरे पीले और लाल रंग के। क्या था वो? पूरा पस। और फिर प्रतिदिन यही कार्यक्रम होता था। और सनातन गोस्वामी सोच रहे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं क्या करूं, महाप्रभु आके जबरदस्ती मुझे आलिंगन देते हैं, मुझे अभी आत्महत्या करनी चाहिए। दूसरे दिन परमात्मा है, स्वयं भगवान है, दूसरे दिन आके सनातन को, सनातन हरिदास ठाकुर बोलते हैं, हरिदास देखो कोई कोई लोग सोचते हैं कि उनका शरीर उनका है जबकि वो उन्होंने मुझे दिया हुआ है। ये सनातन आत्महत्या करना चाहते हैं जबकि उन्होंने मेरा, उनका जो शरीर है मुझे दिया हुआ, क्या अधिकार है उनको? तभी सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हे भगवान, आप जिस प्रकार से मुझे आलिंगन देते हो, जिस प्रकार से मेरे शरीर के फोड़ों का ये जो रस जो है वो आपको गंदगी में डाल देता है, मुझे नफरत हो रही है, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। फिर अपने हृदय की बात को भगवान न छुपाते हुए हरिदास को और सनातन गोस्वामी को क्या बताते हैं? आप जानना चाहते हैं मैं ऐसा क्यों करता हूँ? आप जानना चाहते हैं? वो कहते हैं कि मेरे लिए, मैं, आप सब लोग, हरिदास, सनातन, सारे भक्त, मैं एक माँ हूं, आप सब लोग मेरे पुत्र हो। जैसे माँ के ऊपर पुत्र मल मूत्र विसर्जन करता है फिर भी माँ को दुर्गंध नहीं लगता है, माँ को उसमें भी सुगंध नजर आता है। जब बच्चा, जो बालक होता है, वो जब माँ के ऊपर टट्टी कर देता है तो माँ को उसको दुर्गंध बिल्कुल नहीं, उसको सुगंध ही आता है। ये जो माँ बनेगी वही समझेगी, आप लोग नहीं समझोगे, आप लोग समझेंगे जो उन्होंने किया है ये सब, वो समझ जाएंगे कि बच्चे का मलमूत्र भी उसको आनंद देता है। और इसी प्रकार से मैं आपको देखता हूं तो क्यों नहीं मैं आपको आलिंगन दूं? और तब फिर से एक बार जोर से कसकर सनातन गोस्वामी को उन्होंने आलिंगन दिया और एक एक क्षण में सारे फोड़े गायब हो गए। फिर से उनका सारा सारा शरीर जो है सुवर्ण कांति, सुंदर और सुदृढ़ बन गया। तो इस प्रकार से भगवान अपनी लीला से दिखा रहे थे कि भक्त को कैसे देखना चाहिए, जबकि वो पहले ही दिन उसका सुंदर शरीर जो है सुदृढ़ बना सकते थे ना, लेकिन बार 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 उसको आलिंगन दे रहे हैं शिक्षा देने के लिए कि भक्त को कैसे देखना चाहिए। जगर भगवान भक्तों को ऐसे देखते जो भगवान के कुशल है, भगवान वेणु बहुत कुशलता से बजाते हैं, साधारण पंछी उनके कोई कुशलता नहीं है, लेकिन उसमें अपनी कुशलता को ऐड करके उसको डालकर उसी आवाज को बहुत अधिक मधुर बनाते हैं भगवान। ये संकीर्तन है, यही हमें करना है। हमारा आंदोलन क्या है? संकीर्तन आंदोलन। तो भक्त को इस असूया को नष्ट करके इस लेवल पे आना चाहिए ताकि सारे भक्तों के साथ आकर, जैसे मधुपति कृष्ण वन में जा रहे हैं और सारे रंग बिरंगे ऐसे पंछियों के साथ उनके गाने में अपना गाना मिक्स करके उसका एक अधिक लुभावना और सुंदर ऐसा दृश्य बना रहे हैं, यही कार्य भक्त को अपने जीवन में करना चाहिए। और उसके उसमें जो बाधा है, हमारे असूया की बाधा है, उसको नष्ट करना चाहिए। जो भक्ति रसामृत सिंधु है उसमें रूप गोस्वामी बताते कि भगवान का एक भक्त जो है अपने आप को अच्छी तरह से पहचानता है, वो कैसे भगवान से प्रार्थना करता है, वो क्या कहता है कि माय डियर लॉर्ड, हे भगवान, मेरे प्रिय भगवान, आई एम अशेम टू एडमिट बिफोर यू, मैं आपके सामने, मुझे शर्म आ रही है, मुझे आपको बोलते हुए लज्जा आ रही है। आपने भजन सुना होगा, मैली चादर ओढ़ के भगवान तुम्हारे द्वार कैसे आऊं। मैली चादर किस चीज की है? हमारे अहंकार की है, वो हमारे दुर्गुणों की चद्दर पहनकर हम भगवान के सामने कैसे जाएं? यही भगवान को भक्त बता रहा है, आई एम अशेम्ड। क्या बताते हैं? आई हैव कैरिड आउट द ऑर्डर्स ऑफ माई मास्टर्स। मेरे अनेकों बॉस है, स्वामी है, इनकी जो ऑर्डर्स है उसको मैं दिन रात पालन करता हूं। कौन है मेरे बॉस? एक मास्टर स्वामी कौन है? वो कहते हैं काम। काम मुझे सताता है, बार बार मुझे आज्ञा देता है। क्रोध, मद, मोह, मत्सर, ये सारे जो षड रिपु है ये मेरे स्वामी है, और इनकी आज्ञा पालन करते समय मैं ऐसे भयानक कृत्य करता हूं कि मुझे बहुत शर्म आ रही है। और इस प्रकार से उनकी सेवा करने के बावजूद वो कभी तृप्त नहीं होते, और डिमांड करते हैं और डिमांड करते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति बोला ये कर, वो कर दिया तो खुश होना चाहिए। नहीं, वो खुश तो होता ही नहीं, ऊपर 10 काम और देता है। और यहां तक कि सेटिस्फाइड तो होते ही नहीं है, उनको कोई दया भी नहीं आती कि मेरी क्या स्थिति है। वो तो और चाहते हैं मुझसे, मैं मर जाऊंगा लेकिन वो मुझे छोड़ते नहीं है। कोई कोई कीटक है, जो कीटक जो है उसका जो एक बार उसकी मादी के साथ संभोग हो गया तो वही उसका मृत्यु का क्षण होता है। ऐसे कीटक है संसार में, एक बार संभोग कर लेता है वो, उसी समय उसका मृत्यु हो जाता है। ये मालूम होते हुए भी उनकी प्रजा बढ़ते जाती है। क्यों? वो देखते हैं, कह रहे वो गया, वो मर गया, फिर भी वो दूसरा भी जाता है। काइंडनेस नहीं है उनमें। ये काम जो है कभी दया नहीं दिखाएगा, वो आपको और पुश करेगा, बुढ़ापे तक पुश करेगा। हम लोग कभी कभी सोचते बुढ़ापे में हमारा काम क्रोध मोह मदमोसा अपने आप जाएगा। नहीं जाएगा, यू हैव टू वर्क ऑन इट। उसके लिए कार्यक्रम करना पड़ेगा। ओ माय डियर लॉर्ड, ओ लॉर्ड ऑफ द यदूज, हे यदुनाथ, कृपया आप मुझ पर कृपा करें, आपके चरण कमलों पर मुझे लेकर मुझे आपकी सेवा का अवसर प्रदान करें। यही हमारा मंत्र है। प्रभुपाद ने जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जो रूपांतर है उसका जो ट्रांसलेशन हो क्या किया है, ओ माय लॉर्ड कृष्ण ऑल अट्रैक्टिव लॉर्ड, ओ माय लॉर्ड राम, ओ एनर्जी ऑफ द लॉर्ड श्री राधा, प्लीज एंगेज मी इन योर डिवाइन सर्विस। ये हम लोग हर दिन गाते हैं, इसका हमें एहसास होना चाहिए। तो यही भगवान को भक्त बताता है। इसी प्रार्थना के कारण और हमारी साधना भक्ति, जिसमें वैष्णव सेवा आ गई, हरिनाम आ गया, दूसरे भक्तों का आदर करना आ गया, हमारे सुपीरियर से उनके आदर करना आ गया, भक्तों से असूया नहीं करने का प्रयास करना आ गया, ये सब जब हम करेंगे तब हम भी भगवान के दृष्टिकोण से इस संसार को और दूसरे भक्तों को देख पाएंगे, और हम भी बहुत सुंदर तरीके से जॉयफुली कोऑपरेट, नॉट टीयरफुली, आंसू आ जाते कैसे कोऑपरेट करूं, लेकिन जॉयफुली यू कैन कोऑपरेट। व्हाई? बिकॉज नाउ यू हैव, आपकी नज़र कैसे बन गई? भगवान की नज़र, भगवान की नज़र के साथ हमारी नज़र को मिला देना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है पूछ। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय।